जब इनके उलमा ने अल्लाह की किताबों को चेंज किया, पहले समझ लें फिर आयत आसान हो जाएगी। जब आयत बदली, यानी जैसे मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, तो जो मैं आपको कुरान पढ़ा रही हूँ, जब मैं ये बदल दूँ, मिसाल है कि आपके लिए नरमियाँ, आसानियाँ, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आपकी मजबूरी, आप इधर रहते हैं, बिकॉज यू स्टडी हेयर, बिकॉज यू ये, बिकॉज बिकॉज करूँ, तो आपको पता क्या होगा? आज आपको अगर मुझे देख के 1 गुना प्यार आता होगा ना, और 10 गुना गुस्सा आता होगा, ये हम पे इतनी सख्तियां क्यों करती हैं, तो कल आपको मैं 5 गुना प्यारी लगूंगी, 5 गुना बुरी लगूंगी, और एक दिन तो मेरी इस मीठी जुबान से आपको इतनी अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी, आप कहेंगे हमारी उस्ताद ही सब कुछ है। नतीजा क्या होगा? वो पैगाम पीछे उस्ताद साहब जब वो टिमने पे चढ़ के बैठ जाएंगे, फिर कोई उसको बुत बना लेगा, कोई उसको पूजेगा, कोई उसकी तस्वीर बना के अपने कमरों में लगा लेगा, कोई उनके आने पे खड़े हो जाएगा। ये होता है बात वाजे, यही होता है कि जब पैगाम चेंज हो जाता है तो पैगाम देने वाला बड़ा प्यारा लगता है। मैं ही आपके लिए चेंजेस थोड़ी सी कर दूं ना, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान का जितना हिस्सा बड़ा है, और शहर के आपसे 10 गुना लोग ज्यादा आएंगे इधर, ये भी बता दूं, क्योंकि लोगों को जब वो चीज मिलती है जो उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक है। और याद रखिए, ये मुंह से कोई नहीं कहता कि हम सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि वहां सुनते हैं तो फिर बातें पढ़ते हैं तो बड़ा डर लगता है और खौफ आता है। कोई एक दो बड़बोले होते हैं जो कह देते हैं नहीं भाई सुनते हैं, तो फिर डर बड़ा लगता है, नहीं फिर अमल करना है। लेकिन 98% जो लोग जिनको पता है कि बात पढ़ी जा रही है वो नहीं आते ना, इनसाइड जो खौफ होता है ये है कि बातें पता चल जाएंगी तो अमल करना पड़ेगा, कहते नहीं है, मुंह से नहीं बोलते। तो नुकसान क्या होता है? वो महरूम रहते हैं। यहूद के साथ जो मामले हुए वो तो अलग थे, आयते वफद नजरान और उसके जिम्मत में उतर रही हैं। क्रिश्चियंस ने हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथ क्या मामला किया, इसका तस्करा आप देखिए आयत 79 में, मां कान अली बशरन, नहीं है किसी शख्स की ये शान, यानी किसी इंसान के शायान ने शान ये बात है ही नहीं, जिसको आप इंग्लिश में कह लें कि इट डजन सूट्स 20%, क्या कि ऐं युतियहुल्लाहुल किताब, कि अल्लाह उसको किताब दे, नंबर एक, यानी एक शख्स है और जिसको किताब दी जाएगी वो क्या होगा, रसूल होगा ना, तो यहाँ रसूल की बात है कि अल्लाह उसको कोई किताब दे दे, और क्या दे दे, वल हुक्मा, और हिकमत दे दे, हिकमत भी दे दे और साथ साथ फैसले करने की तौफीक दे दे। लफ्ज हुक्मत जो है ना, हिकम, इंग्लिश में आप देखिए एक लफ्ज होता है डिस्टिंग्विश करना किसी चीज को, ठीक है, और दूसरा लफ्ज होता है डिसाइड करना, बस दोनों ही मानी हिकमत में है। हिकमत से मुराद विजडम भी है। हुकूमत को हुकूमत क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो लोगों के फैसले करती है। तो हिकमत से मुराद क्या है कि अल्लाह नबियों को नंबर एक अथॉरिटी दे दे कि तुम दुनिया में फैसले नाफिज करो, और दूसरा यह है कि उनको अल्लाह ऐसी हिकमत दे दे कि जिसके साथ वो दूसरों के बीच में चलते जाए। तीसरी चीज वह नबुवह, और नबुवत भी दे दे। तीन चीजें जब अल्लाह किसी बंदे को दे दे, सुम्मा यकूल लिन्नासी, फिर वो इन चीजों को पाने के बाद लोगों को कह दे कूनू इबादल्ली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर मेरे ही बंदे बन जाओ। बात वाजे, किसकी तरफ इशारा है? क्रिश्चियंस की, कि देखो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ईसा इब्ने मरियम को भेजा, उनको किताब दी, उनको हिकमत दी, उनको नबुवत दी, मुझसे दिए, तो क्या वो ये कह सकते हैं कि तुम जीजस को अटकाओ? वो कह सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि नबी क्या कहते थे, वलाकिन कूनू रब्बानीयीन, सबसे खूबसूरत लफ्ज इस हिस्से का, कि बल्कि वो तो ये कहते हैं कि तुम रब वाले बन जाओ, यानी सच्चे नबी, तो ऑफकोर्स सच्चे रसूल नबी और सच्चे दीनदार आलिम उस्ताद, उनकी तालीमात का खुलासा एक होता है कि हमारे बंदे ना बनो, शख्सियत परस्ती में ना खो, हमारे गुण ना गाओ, बल्कि कूनो रब्बानी जीन, रब वाले बन जाओ, रब्बानी बन जाओ। बीमा कुन तुम तुअल्लिमून अल-किताब व बीमा कुन तुम तदरुसून, कि तुम लोगों को किताब की तालीम देते हो और तुम खुद भी इसी को पढ़ते पढ़ाते हो। क्या मतलब है इस आयत का? कि अल्लाह की किताब की तालीम और तालुम, यानी सीखने और सिखाने का तकाजा क्या है, कि दीन सीखा जाए, दीन फैले, इस तरह से लोगों को दीन के अहकामात बताए जाएं कि जिस तरह से लोगों को बताए गए। अपनी मर्जी से कमी बेशी ना करो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, फिर ये बात शायद वाजे कर सकूँ। आप देखिए कि पोस्टमैन का क्या काम होता है, बताएं आप में से कोई? जी आप बताइए फारिया, पोस्ट डिलीवर करता है ना। अब आप देखिए कि जो पोस्ट में लेटर्स आते हैं ऑलवेज घरों में, कितनी किस्म के होते हैं उसको आप बड़ी बड़ी कैटेगराइज कर लेना, तो दो किस्म के होते हैं। एक लोगों को दुखी करने वाले बिल्स, बिल्स आते हैं, पोस्ट खोल के देखना क्या नहीं रहे बिल्स, लाइबिलिटीज, ठीक है। और दूसरी पोस्ट में क्या चीजें आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज, कोई जॉब लेटर था और वो फाइनल हो गया, कोई नाम निकला, आपके क्यूपन्स आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़े होते हैं हमारे लिए, कोई सेल का लिफाफा आ जाता है कि वहां सेल लगी, भागो फटाफट, खत्म ना हो जाए तुम्हारे जाने से पहले। अब आप सोचिए एक पोस्टमैन का काम क्या है, आप पाकिस्तान का पोस्टमैन ले, घरों में जाके डाक देता है, वहां आप थोड़ा सा और छोटे लेवल पे कर ले, किसी की डेथ की खबर दे सकता है, बीमारी की खबर, कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट आ गई, कुछ भी हो सकता है ना। पोस्टमैन क्या करता है कि जस्ट नीड टू डिलीवर इट एंड गो इट। अगर वो पोस्टमैन के देखो मैं पोस्ट देने जा रहा हूँ और ये जब पोस्ट खोलेगा तो इसको कितना दुख होगा, सैड न्यूज है, तो या तो वो सारे दुखी खबरों वाले सारे लेटर्स आपके बिल छुपा ले और आपको अच्छी अच्छी खुशखबरियां वाली चीजें देने लग जाए, नुकसान क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ बिल आपने जमा नहीं कराया, बिल आए कोई नहीं, आपके पास तो नहीं पहुंचा, कंपनी क्या करेगी, आपकी बिजली काट देगी, वो ये नहीं कहेगी कि आपको मिला नहीं। आप उस पोस्टमैन से पूछे हैं भाई के बताओ भाई, कोई मेल मेरी आती थी, वो कह जी आई थी पर मैंने कहा आपको ये लेटर पढ़ के दुख होगा, आपको अफसोस होगा, आप परेशान होंगे, तो मैंने सारे दुखी दुखी खत फेंक दिए आपके, क्या होगा। आप उस पोस्टमैन से मोहब्बत करेंगे कि उसको जूतों से मारेंगे, आप कहेंगे अल्लाह के बंदे उस दिन तो आप बड़े खुश हुए, मिसाल है पोस्टमैन से आपने बाय हैंड लिया और वो आपको बड़ी खुशी का खबर देता है, आपको कहता है दिस इज योर जॉब लेटर, के और रुक रुको अंदर जाए आप एक चॉकलेट और एक ड्रिंक ला के उसको दे, वो थैंक यू थैंक यू, तुमने इतनी अच्छी खबर दी। जैसे पाकिस्तान में पहले मारूफ था ना गांव में कि कोई अच्छी खबर लेके जाता है तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे, या जैसे वो नाई होते थे खबरें लेके जाते थे इधर उधर की, बुलावे देते थे शादियों के, तो लोगों को जोड़े मिलते थे, चीनी लेके आते थे गांव में, अगर आप देखें लोगों को तो इस तरह की चीजें मिलती है ना। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई पोस्टमैन सिर्फ अपनी जात से खुशी चाहे और आपको खुश करे तो वो मैसेज चेंज कर देगा, और अगर वो रियल पोस्टमैन है वो क्या सोचेगा, मुझे इससे चॉकलेट कैंडी नहीं चाहिए, पोस्ट ऑफिस से मुझे पैसे तो मिलने, उसको अच्छी खबरों के ज्यादा और बुरी खबरों के बुरे नहीं मिलेंगे, राइट। इवन कोई डिलीवर करने जाए और ना भी उठाए उसको तो पैसे मिल गए। तो नबियों का काम और आज के दौर में दीन के दाई मुबल्लिगीन टीचर प्रीचर्स और जो भी आपको लेक्चरर्स दिखते हैं उनका काम पोस्टमैन का काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, आपको खुशी हुई आपका नसीब, आपको दुख मिला आपका नसीब, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के दिए हुए दीन में सिर्फ खुशखबरियां हो, ये तो दुनिया में कभी आज तक हुआ ही नहीं है, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह किताब नाजिल करे और सिर्फ फजाइल से भरी हुई हो, खुशखबरियों से भरी हुई हो, नहीं होगा, फूल के साथ है कांटे, मानिए आपको मानना पड़ेगा क्योंकि अगली आयतों में अब इस्लाम की बातें आ रही हैं। हम किसी को इस्लाम की दावत देते हैं नॉन मुस्लिम है, हम क्या कहते हैं मुस्लिम हो जाओ बड़े मजे हैं तुम्हारे, अच्छा जी मजे के तुम्हें ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, गलत कहते हैं आप जिस तरह उसको इस्लाम की तरफ बुलाते हुए इस्लाम का पीस दिखाते हैं ना खुशी साथ, बताइए यस देर आर सम लाइबिलिटीज ऑफ कोर्स, नमाजें भी हैं रोजे भी हैं हज भी हैं, आज हमारा एक बहुत बिग इशू बन गया कि हम दूसरों को भी जब इस्लाम की दावत देते हैं ना तो उस वक्त एक फैंटेसी वर्ड दिखाते हैं, जंतर छू मंतर, बस मुसलमान हो जाओ फिर देखो घुन बरसेगा, वो कहेंगे अच्छा हो जाते हैं मुसलमान, जब मुसलमान होते हैं पता चलता है कि पहली भी जॉब चली गई, दोस्तों की प्यारों की मोहब्बतें चली गई, तो फिर वो और दुखी होते हैं, क्लियर कट बात करें ये होगा। मतलब आप घर से आए आप साथ अपने किसी को लेके आ गए, आपके बड़ा ही मजा आता है इधर, बहुत मजा आता है, मजा तो आएगा, इल्म मिलता है बहुत है, मिलता है, लेकिन आप उसको साथ बताएं कि सफर करना पड़ता है, वॉशरूम में जाने को दिल चाह रहा होता है लेकिन नहीं उठते, ब्रेक में टाइम होता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, हाँ यहाँ लिखना भी पड़ता है, यहाँ बैठना पड़ता है, घर से बता के लाए क्योंकि हम कोई मूवी देखने नहीं आते, समझते ना। तो हमेशा जो चीज है वो रियलिस्टिक हो। मुझे किसी ने कुछ इस वीकेंड पे बात की, कहने लगी कि मेरी जिंदगी में बहुत गहरा असर डाला है इस साल के दौरे कुरान ने, और वाकई उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है, मैं भी मानती हूँ जहां तक मैं जानती हूँ, तो कहने लगी कि मेरा दिल करता है कि मैं एक किताब लिखूँ तब्दीली का सफर, तो मैं उसमें वो सारी फीलिंग्स लिखूँ कि जो मेरे साथ हुई और मैं बदली, तो शायद मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जो बहुत दूर थे समझ जाए। मैंने कहा वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। कहती मैं किताब लिखूंगी। बाद में क्या हुआ, बात कहने लगी कि मैं आपके ऊपर किताब लिखूंगी, आप मुझे जरा अपनी डिटेल्स भेज दें। तो मैंने दो जुमलों में लिखा कि व्हाट यू फील जस्ट राइट दैट। असल लोगों को जिस चीज की जरूरत है ना, वो आपकी फीलिंग्स है। आप यहाँ से किताब पढ़ते हुए क्या लेके जाते हैं? अगर एंड पे जरूरत पड़ी मेरी चार बातें, कौन है, किधर जाते हैं, तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन इट्स नॉट द बिग इश्यू। आपने मेरे से नहीं लोगों को जोड़ना, आपने इस पैगाम से जोड़ना है। तो बात हमको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए कि लोगों में ना खोए, जो लोगों को देख के आते हैं ना, वो लोगों को देख के चले भी जाते हैं। ये जुमला भी लिख ले। कोई कहता है मैं तो आपको देख के आया हूं, अल्लाह ना करे बशरी तकाजे से कोई आपके अंदर उन्होंने कमी देखी, पलट जाएंगे। इसलिए बहुत इनसिक्योर हैं वो लोग जो शख्सियत परस्ती में खो जाते हैं। फुलां बोलता बड़ा प्यारा है इसलिए उसकी बात सुननी है, फुलां खूबसूरत बड़ा है इसलिए उसकी बात सुननी है, फुलां बहुत ऐसा है। नहीं, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, उसको अच्छा एटमोसफेयर मिलता है। मसा आप में से कोई इस हॉल में आए क्योंकि ये हॉल बड़ा कंफर्टेबल है, वेरी गुड, यहाँ हीट एंड एसी का बहुत अच्छा रेंज है, और यहाँ देखिए इतनी सॉफ्ट चेयर्स हमारे ऊपर रखी, टेबल है। आप अगर इस सोच से आएंगे ना, एक दिन आप आए, हीट नहीं चल रही, ठुठरना बढ़ गया, थोड़ी बहुत कोशिश की कुछ हुआ, अगले दिन आप आए पता चला कि आपके आगे टेबल ही नहीं है आज, बड़ी जरूरत ही, नहीं चले गए, ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप फिर जरा थिड़केंगे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तीसरे दिन आप आए पता चले कुर्सियां भी नहीं है, उसकी जगह डेस्क रखे हुए, और दो चार थे दिन या एक हफ्ते महीने के बाद पता चले कि भाई उन्होंने कह दिया हम आपको टेबल चेयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको बैठना है तो कारपेट पे बैठे। तो फिर वो सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे जो इस कंफर्ट जोन में आकर पढ़ने के यूज्ड हो गए। आप कहे हक को मानना है, हर कीमत पे मानना है, तकलीफ होती है, कोई आसान तो नहीं है जिहाद करना, सुबह को उठना आसान तो नहीं है, आपको सबक याद करना आसान तो नहीं है, असाइनमेंट करने आसान तो नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि नबियों का मैसेज हमेशा क्या होता है, कूनू रब्बानीशीन। ये लफ्ज देख लीजिए, रब्बानीशीन, रब्बानी का लफ्ज पीछे पड़ा है आपने, ये उसकी जमा है। कौन होता है रब्बानी? अब मैं इतनी क्विकली पूछूंगी ना तो आप घबरा जाते हैं कि रब्बानी कौन है, रूट क्या है इसका, रब वाले, रिबी। पीछे जिक्र किया था मैंने आपको कि क्रिश्चियंस के जो बड़े थे ना उनका टाइटल रिब्बी था, और ज्यूज के जो लीडर्स होते हैं, जो मौलवी जिसको आप कहें, उनको हेब्र कहते थे। अहबार पीछे हम पढ़ चुके हैं, आगे भी आयत आएगी इंशाल्लाह ताला कि लौला यनहाहुमुर रब्बानीयून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म वक्लिहिमुस्सुक्त। सूरत मायदा की आयत है कि इनके उलमा और रब्बानी और इनके अहबार जो थे, इन्होंने इनको हराम खाने से क्यों नहीं रोका था। तो लिहाजा आज क्रिश्चियंस अपने बड़ों के लिए डिवाइन का लफ्ज जो बोलते हैं, डिवाइन का उर्दू तर्जमा रब्बानी है। बस ये समझ लीजिए कि रब्बानी वो लोग होते हैं कि जो लोगों को रब से जोड़े, जिनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि लोग रब के बंदे बन जाएं। इसलिए पीछे आप देखिए माँ काना ली बशर इनका लफ्ज आया, और बशर इंसान को कहते हैं, वाहिद के लिए भी आता है, जमा के लिए भी आता है, ठीक है, अबशार इसकी जमा होती है, खाल स्किन वाला, पीछे इस पे बात हुई थी, ठीक है, इसी से लफ्ज मुबाशरत है, शौहर बीवी का आपस में मिलना, खाल से खाल मिलती है, बुशरा बशारत, ये सारे लफ्ज इसी के अंदर है। अब यहाँ जो लफ्ज आ गया वो है रब्बानी, तो रब्बानी की कुछ तारीफें की गई हैं, वो कौन सी हैं? आप देखिए कि हम सब की इस वक्त पारे की तकमील पे जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो क्या है कि अल्लाह मुझे रब्बानी बना दे। जितना ज्यादा आप रब्बानी बनेंगे ना, उतनी ही ज्यादा अल्लाह ताला आपको समझ भी देगा और अपना खौफ भी देगा। ये तर्जमे जो याद करते हैं ना, लफ्जी तर्जमे जाहिर, ये आपकी जहनी इस्तेदाद से होता है। किसी का माइंड अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, किसी की नहीं है, किसी का घर में डिस्ट्रेक्शंस नहीं है, किसी के पास है, किसी के वक्त कम में ज्यादा, ये तर्जमा इसमें, ये जहन है। रिबियत जो है ना, ये आपके दिल की कैफियत है। जितना दिल डालेंगे ना आप अपनी क्लास में, अपने कलाम में, इस कुरान में, उतना ज्यादा आप रब्बानी बनेंगे। कुछ तारीफें नोट कीजिए। रब्बानी उस आलिम को कहते हैं जो इल्म के तकाजों पर हमेशा अमल करे, लफ्ज हमेशा जरूर लिखिएगा, वरना थोड़ा बहुत अमल तो हम सभी करते हैं, हमेशा हर हाल में, गर्मी है कि सर्दी है, धूप है कि छांव है, दिल मस्जिद में अटकाव है, पढ़नी है नमाज मस्जिद में। ये नहीं कभी नसीब हुई तो एक जमात से पढ़ ली बाकी घर पढ़ ली। मिसाल दे रही हूँ, पर्दा है तो हर हाल पे पर्दा है, ये नहीं कि आम पर्दा है लेकिन शादी में कहा चलो उतार देते हैं कोई बात नहीं है, अच्छे लग रहे हैं आज लोगों को अपना आप दिखाते हैं, ये नहीं है। ठीक, हमेशा अमल करें। फराइज वाजिबात यानी जो भी कंपल्सरी थिंग्स है, वाजिब वाजिबात जो चीज़ें इंसान को रिकमेंडेड है, सुनन सुन्नतें और मुस्तहिबात। अब ये चार मुश्किल लफ्ज़ हैं, फराइज वाजिबात सुनन और मुस्तहिबात। मैं इसका अब इंग्लिश में बोलूँगी तरतीब के साथ। फराइज बोलिए, आप ही बोले। ऑब्लिगेशंस। वाजिबात क्या है? ड्यूटीज यानी जो आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से लाइबिलिटीज कह सकते हैं। सुनन सुन्नत से, प्रॉफिट्स की सुन्नत, वे ऑफ प्रॉफिट, और मुस्तहबात रिकमेंडेड। ठीक है, हर चीज पर आमिल हो और हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से दूर रहने वाला हो। आपको पता है कि एक शख्स को रब्बानी उम्मत कहा जाता है, वो कौन है? किसी को पता? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को। जब इनका इंतकाल हुआ तो मोहम्मद बिन हनीफा थे, कहने लगे इस उम्मत के रब्बानी फौत हो गए। और मैं जब भी हजरत इब्ने अब्बास का तस्करा करती हूँ ना तो मेरा दिमाग कहीं चला जाता है। मुझे एक बात पहले नहीं पता थी, एक मौके पे कोई इस्तखारा था, क्या था, कोई ख्वाब था, तो मैंने किसी को ख्वाब में देखा। अल्लाह दिखाता है, बंदा तो नहीं देख सकता। और बहुत कम ख्वाब आते हैं ना, अपनी जहन इस तरफ ना कुछ। बड़ा अनयूजल ख्वाब था कि मेरे दरवाजे पे वो खड़े हैं और मैंने उस वक्त उनको देखा, और मुझे कोई पीछे से कहता है तुम्हें पता है ये कौन है तुम्हारी चौखट पे? और ये इब्ने अब्बास के लफ्ज है मेरे कानों में कि वो दूसरे शख्स कहते हैं कि इब्ने अब्बास है। लेकिन मैं जो चीज़ ख्वाब में महसूस करती हूँ वो क्या है कि उनकी आंखें नहीं है ना बीना है। और बहरहाल डिटेल और भी है, उसको छोड़ दीजिए। जब मुझे ये ख्वाब अल्लाह ने दिखाया और जो भी उसका था ताबीर, तो बाद में मैं परेशान थी कि मैंने उनको नाबीना क्यों देखा। मुझे उस वक्त तक नहीं पता था, मैं आपको अपने इल्म की कमी बताऊं, जाहिर वो एक इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ब्लाइंड हो गए थे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या हकीकत थी, लेकिन याद रखे कि हज़रत इब्ने अब्बास वो शख्स है कि जिनको अल्लाह के नबी ने कुरान की तफसीर के लिए चूज किया था। आपने कहा कि मेरे बाद तुमने कुरान का इल्म हासिल करना तो इब्ने अब्बास से करो, ये मेरी उम्मत में फकीह है। तो इनके बारे में लोग कहते थे कि ये रब्बानी है, लोग कहते थे कि आज इस उम्मत का रब्बानी फौत हो गया, दुनिया से चला गया। फिर इसी तरह आप देखिए कि हुक्मा और उलमा यानी हकीम और आलिम और फकीह बन जाओ। रब्बानी उस शख्स को कहा जाता है जो लोगों को बड़े उलूम से पहले छोटे उलूम की तालीम दे। ये बड़ी काबिले गौर बात है, सही बुखारी की ये रिवायत है। यानी बड़ी बड़ी बातें ना सिखाओ, पहले लोगों को छोटी सिखाओ। मसलन मैं यहाँ आपको पढ़ाने आती हूँ, एक तो हम तरतीब से कुरान पढ़ रहे हैं ना, इसमें तो हर चीज़ आनी है इंशाल्लाह। और ये जो कुरान की तरतीब है ना, बाज़ लोग सोचते हैं कि मक्की सूरतें पहले पढ़ लें या 30वां पारा पहले पढ़ लें, कभी सोचते हैं ना? मैं सोचती हूँ कि ये जितनी तरतीब मुअस्सर है ना, क्योंकि ये भी इल्हामी है, इसका असर हम चेंज नहीं करते। कभी लोग दावत देते हैं आए और सिर्फ बच्चियों को सूरत नूर पढ़ा दें क्योंकि उसमें इस तरह के मसाइल हैं, तो मैं बिल्कुल इस आइडिया को पसंद नहीं करती। मैं कहती आप एकदम सूरत नूर उनको पढ़ा देंगे, अभी सूरह फातिहा तो उन्होंने समझी नहीं, तो बात नहीं बनती। ठीक है, तो हरी पानी की एक तारीफ नोट करें कि लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताने से पहले छोटे छोटे मसाइल बताएं। आज यही तो मसला है, हम बड़ी बड़ी फिकी बातों में इतने उलझे हुए हैं कि लोगों को बाज़ दफ़ा नमाज भी ठीक नहीं पढ़नी आती, वुजू तक सही नहीं करना आता, और इस तरह की चीजें लेके जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का कॉल लिखिए, कहते हैं कि रब्बानीन हुक्मा और उलमा है, यानी जिसको अल्लाह ने हिकमत दी और जिसको इल्म दिया वो रब्बानी बन जाएगा। फिर इसी तरह किसी शख्स को भी कुरान मजीद हिफ्ज करने में जो मुश्किल होती है उसको ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम रब्बानी बन जाओ, ये दहाक का कॉल है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन आई थिंक सो कि आपके लिए इतने बहुत हैं। मुझे याद है कि आरकेपी में मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखाए थे, अब ये नहीं पता कि इस वक्त किस फॉर्म में आपको अवेलेबल है ऑनलाइन पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देती थी मैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तो अल्लाह सुबहान तआला यहाँ बताता है कि तुम रब्बानी बन जाओ। मेरे लिए इसमें बस अमल की ये बात है कि मेरी नज़र अल्लाह पे लग जाए, रब मेरा रब, हर बात में ध्यान अल्लाह की तरफ, मैं अल्लाह की नज़रों में कैसी हूँ, अल्लाह मुझे पसंद करता है कि नहीं, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे देखेगा कि नहीं, अल्लाह ताला मुझे पाक करेगा कि नहीं। अल्लाह 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 की ज़ात। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि जब हम इन आयतों को पढ़ाते हैं तो अपना मुहासबा भी करने की ज़रूरत है कि क्या हम लोगों को अपने ज़ात से जोड़ते हैं या फिर लोगों से जोड़ते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह के साथ जोड़ने की बात करनी चाहिए। हुक्म अल्लाह के चलता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये बात कहकर बता दिए कून रब्बानी, बल्कि क्या कहो, कून इबादल ली मिन दूनिल्लाह। वो नहीं कहता बल्कि वलाकिन कून रब्बानी ही नबी मा कुन तुम तअल्लिमून अल किताब व बी मा कुन तुम तदरुसून। यानी सारी बात का खुलासा क्या है कि इल्म का, यानी पढ़ने पढ़ाने का, दरसो तदरीस का, या इस वक्त जिसको आप कहेंगे कोर्स करने का खुलासा क्या है कि कून रब्बानी, अल्लाह वाले बनो। और आज आप इस तीसरे पारे के दाम पे खुद को चेक करें, अल्लाह से कुर्ब में कितनी बढ़ी हो। चले 3 गुना तो बढ़ना ही चाहिए ना, 30 गुना नहीं है तो, या 3 पॉइंट्स तो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आगे हो जाने चाहिए ना। बिल्कुल इंसान अपनी जिंदगी में इस चीज की तड़प पैदा करे कि अल्लाह मुझे अब तेरे हुक्मों के मुताबिक चलना है, और बस मुझे अपना खौफ दे दे। इल्म कभी नहीं बचाएगा, अल्लाह का खौफ बचाता है बंदे को, और अल्लाह ताला हमें अपना खौफ दे दे।
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون